कबीर और युवानी की शादी में अचानक से आयु की तबीयत बिगड़ने पर आरव उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। डॉक्टर मानसी भी उसके साथ थी। आयु की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर मानसी ने इमरजेंसी डिलीवरी करने का डिसीजन लिया। ऑपरेशन थिएटर में भी जाने से पहले उसने आयु की हेल्थ के बारे में आरव को सब कुछ बता दिया था और साथ ही ये भी कहा कि वो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे। इस बीच अयान और बाकी फैमिली भी आ चुकी थी। अयान पहले से ही सब कुछ जानता था। ये बात पता चलने पर आरव उससे भी गुस्सा हो गया। वो इस वक्त किसी से भी बात नहीं कर रहा था। लगभग ढाई घंटे के इंतजार के बाद ऑपरेशन थिएटर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो आरव जल्दी से उठकर ओटी के दरवाजे के पास आ गया। वहीं बाकी सब भी खड़े हो गए। लगभग पाँच मिनट बाद एक और बच्चे के रोने की आवाज़ आई। इसी के साथ आरव की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। बाकी सब भी इमोशनल हो रहे थे। आरव ने नम आंखों से अपनी फैमिली की तरफ देखा तो गौरवी जी जल्दी से उसके पास गईं। गौरवी जी के पास आते ही आरव उनके गले लग गया तो गौरवी जी उसे सहलाते हुए बोली, तुम बेवजह सब पर गुस्सा कर रहे हो, देखो सब ठीक है, अब तो बच्चे भी इस दुनिया में आ गए। मुझे उन तीनों को देखना है दादी, आरव ने गौरवी जी से अलग होकर कहा। कुछ देर इंतजार करो, डॉक्टर आ जाएगी। वेट तो मुझसे भी नहीं हो रहा, लेकिन कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। मुबारक हो मिस्टर खुराना, तुम पापा बन गए, गौरवीजू ने आरव को शांत करते हुए कहा। जवाब में वो मुस्कुरा दिया। वहीं अंदर ऑपरेशन थिएटर का माहौल काफी अलग था। आयु के बेहोश होने की वजह से डॉक्टर ने सी सेक्शन से उसके बच्चे पैदा किए थे। डॉक्टर मानसी की टीम की दो नर्सेज ने दोनों बच्चों को संभाल रखा था। उनमें से एक ने कहा, बच्चे टाइम से पहले हो गए, फिर भी काफी हेल्दी है, हमें नहीं लगता कि इन्हें एनआईसीयू में रखने की जरूरत है, वो बाद में डिसाइड करेंगे, बच्चों को क्लीन करके एनआईसीयू में ले जाने से पहले खुराना फैमिली को बता दो, मुझे पेशेंट को देखना होगा, इसकी पल्स गिर रही है, मानसी ने हड़बड़ाहट में जवाब दिया और वो अपनी जूनियर डॉक्टर लाविया के साथ आयु को ट्रीट करने में लग गई। नर्स अपने काम में लग गई तो वहीं मानसी जूनियर डॉक्टर से तेज आवाज में बोली, जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ, कैसे भी करके इसे बचाना होगा, डॉक्टर ब्लड लॉस काफी हो गया है, खून चढ़ाना होगा, लाविया ने कहा और नर्स को ब्लड लाने के लिए कह दिया। ऑपरेशन थिएटर से नर्स दौड़कर बाहर गई तो अयान समझ गया अंदर क्या चल रहा है। आरव उससे कुछ पूछता उससे पहले अयान जल्दी से उसके पास गया। अयान को देखते ही आरव हैरानी से बोला, बच्चे तो डिलीवर हो गए हैं, हमने उनके रोने की आवाज़ सुनी, फिर ये भागकर बाहर क्यों गई, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हैं, जवाब दो अयान, अंदर क्या चल रहा है, वरना मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। अयान आरव की बात का कोई जवाब देता उससे पहले नर्स बच्चों के साथ बाहर आ गई थी। उसके फेस पर हल्की स्माइल थी और उसने दोनों बच्चों को थाम रखा था। नर्स आरव के पास आकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर खुराना, बेबीज प्री मेच्योर होने के बावजूद भी बहुत हेल्दी हैं, फिर भी सेफ्टी के लिए हम इन्हें एनआईसीयू में शिफ्ट करेंगे। गौरवी जी उनके पास आईं और एक बच्चे को अपनी गोद में लिया, दूसरे बच्चे को अयान ने थाम रखा था। नर्स ने आगे कहा, एक लड़का और एक लड़की है। आरव का बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था, उसका ध्यान अभी भी अंदर अटका था। तभी उसने देखा नर्स और एक दो स्टाफ मेंबर ब्लड और बाकी चीजों के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहे थे। उन्हें देखकर आरव ने नर्स से पूछा, मेरी वाइफ कैसी है डॉक्टर, क्या चल रहा है अंदर। आरव की बात सुनकर नर्स ने नजरें झुका ली और फिर धीरे से कहा, डॉक्टर मानसी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ब्लड काफी लॉस हो गया, पल्स गिर रही है, वो अपनी तरफ से उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। कोशिश कर रही से क्या मतलब, कोशिश क्यों करनी पड़ रही है, उस डॉक्टर ने कहा था वो बिल्कुल ठीक है, मैंने पहले भी उससे सब कुछ पूछा था लेकिन उसने झूठ बोला, आरव गुस्से में डॉक्टर पर चिल्लाया। वो अंदर जाने को हुआ तभी अयान ने उसे वहीं पर पकड़ लिया। आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते हैं, अयान ने सख्त शब्दों में कहा, वो अंदर मर रही है और तुम बोल रहे हो मैं अंदर नहीं जा सकता, मुझे तुम लोगों के कोई रूल्स नहीं मानने, तुम सब लोगों ने मुझसे झूठ बोला, इस हिसाब से मुझे तुम सबको निकाल देना चाहिए, आरव ने अयान का हाथ झटका। अयान उसके सामने आ गया और उसे रोकते हुए कहा, चेंज कर लीजिए फिर चले जाइएगा, वरना इन्फेक्शन होने से उसे खतरा बढ़ सकता है। अयान जैसे तैसे करके आरव को मनाकर चेंजिंग रूम में लेकर गया। वहीं आयु की ऐसी हालत के बारे में सुनकर ताराजी ने रोते हुए जयजी के कंधे पर सिर रख लिया। ताराजी ने सुबकते हुए कहा, मैं अपनी एक बेटी को खो चुकी हूँ, अब दूसरी को नहीं खोना चाहती, आयु को कुछ होगा तो नहीं ना, अब तो मुझे भी डर लग रहा है, शादी में गेस्ट के बीच उससे बात नहीं कर पाया, बहुत दिनों से उससे ठीक से मुलाकात भी नहीं हुई थी, उसे देखकर बार बार उसके पास बात करने जाने का मन कर रहा था लेकिन टाइम ही नहीं मिला, कहाँ हम गुड न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये सब हो गया, जयजी ने इमोशनल होकर जवाब दिया। बाहर उन सबके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। वहीं चेंज करने के बाद वो दोनों ऑपरेशन थिएटर के अंदर थे जहां मानसी अपनी टीम के साथ आयु की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। अयान को देखते ही मानसी ने धीरे से कहा, बॉडी किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, हर तरीका आजमा कर देख लिया, हम कर लेंगे, अयान ने जवाब दिया। अयान डॉक्टर मानसी का साथ देने के लिए आगे आ गया था और उसने इस केस को अपने हाथ में ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ दुबई में फैज एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक कॉल आया। कॉल सुनकर वो जल्दी से खड़ा हो गया और मीटिंग से बाहर आ गया। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। बाहर आकर फैज गुस्से में जोर से चिल्लाकर बोला, क्या मतलब है आपके कहने का, इतनी जल्दी डिलीवरी कैसे हो सकती है, अभी दो महीने का टाइम बाकी था, प्री मेच्योर डिलीवरी हुई है, यहाँ काफी हड़बड़ी मची हुई है, मैंने सुना है कि उसकी जान को खतरा है, डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैंने यही सुना है कि लगता नहीं उनकी जान बचेगी। सामने से एक आदमी की आवाज आई,
जिससे फैज के चेहरे का रंग उड़ गया। आप इतनी अश्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं? फैज ने कंफर्म करने के लिए पूछा। थोड़ी देर पहले मैं ब्लड लेकर उसके रूम में गया था। मैंने डॉक्टर को यही कहते हुए सुना कि वो अपनी कोशिश करना नहीं रोकेंगे, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। फैज को जो सब कुछ बता रहा था वो हॉस्पिटल में काम करने वाला एक वार्ड बॉय था जो थोड़ी देर पहले आयु के लिए ब्लड लेकर गया था। फैज ने आगे कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे पर गहरी निराशा के भाव थे और वो खुद से बोला, हमारी किस्मत आपके मामले में इतनी बुरी नहीं हो सकती डॉक्टर, आपको जीना होगा और हम आ रहे हैं आपके पास। हमने बहुत टाइम दे दिया आपको और आरफ खुराना को, लेकिन अब और नहीं। फैज इस वक्त मुंबई जाने के लिए निकल गया तो वहीं मुंबई में हॉस्पिटल में अभी भी अयान डॉक्टर मानसी के साथ आयु को बचाने की जद्दोजहद में लगा था। आरफ वहां बेसुध सा खड़ा आयु के चेहरे की तरफ देख रहा था जो धीरे धीरे बेजान होता जा रहा था। आयु ने अपने ट्विंस बच्चों को जन्म दे दिया था जिनमें एक लड़का और एक लड़की थी। उसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। आरव और अयान ऑपरेशन थिएटर के अंदर थे जहां अयान मानसी की हेल्प कर रहा था। हर कोई आयु के बचने की प्रे कर रहा था। फैज को भी आयु की कंडीशन के बारे में पता चल गया था तो वो भी तुरंत मुंबई आने के लिए निकल गया। बच्चों के पैदा होने के लगभग 2 घंटे तक अंदर आयु का ट्रीटमेंट चल रहा था।
आयु की पल्स नॉर्मल होते देखकर मानसी ने अयान की तरफ देखकर कहा, फाइनली वी डिड। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। अयान ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ थम्स अप किया और फिर आरफ की तरफ देखकर कहा, ये अब ठीक है, लेकिन होश अभी भी नहीं आया है। आरफ ने धीरे से कहा, वो आयु से बात करना चाहता था। मानसी ने आरफ की बात का जवाब देते हुए कहा, होश आने में टाइम लग सकता है, हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे। फिलहाल इसकी जान को कोई खतरा नहीं है, हमारे लिए यही काफी है। हमें अब बाहर चलना चाहिए भाई, डॉक्टर मानसी आगे देख लेंगी, अयान ने कहा और आरफ का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। बाहर आते ही अयान आरफ से बोला, आयु ठीक है भाई, उसे 1-2 दिनों में होश आ जाएगा, आप तब तक बच्चों को देख लीजिए। आरफ ने नामे सिर हिलाया और सर्द आवाज में कहा, मैंने कहा ना, जब तक मेरी मिसेस खुराना ठीक नहीं हो जाती मैं किसी का भी चेहरा नहीं देखूंगा। मुझे बस पहले उससे बात करनी है, वो ठीक होगी तभी मैं उन बच्चों को देखूंगा, वरना दादी हैं उन्हें संभालने के लिए। आरव ने इतना ही कहा और फिर अयान के जवाब का इंतजार भी नहीं किया। आयु को ऑपरेशन थिएटर से जिस रूम में शिफ्ट किया जा रहा था, आरव उसकी अरेंजमेंट देखने में लग गया। अयान ने जैसा सोचा था वही हुआ। वो आरव को जाते हुए देख रहा था और उसे देखते हुए धीरे से बोला, मैंने उसे अच्छे से समझाया था कि अगर तुझे कुछ हो गया तो भाई उन बच्चों की शक्ल भी नहीं देखेंगे, और वही हो रहा है। आई विश कि अब तू जल्दी से होश में आ जाए, वरना इन बच्चों की कोई गलती नहीं है जिसकी वजह से भाई इनके साथ रूड हो रहे हैं। ये अपने बच्चों की शक्ल ना देखें, लेकिन मुझे उन्हें देखना है। सभी आयु की हेल्थ के चक्कर में इतना बिजी हो गए थे कि उनमें से किसी ने बच्चों को ठीक से देखा तक नहीं था। अयान उस तरफ जा रहा था तो साक्षी भी उसके साथ चली गई। उन्होंने देखा दोनों बच्चों को वहां लेटाया हुआ था। साक्षी ने लड़के को गोद में ले रखा था तो अयान ने लड़की को। उन दोनों की आंखें अभी बंद थीं। बच्चों को हाथ में लेने के बाद अयान इमोशनल हो रहा था। उसने नम आंखों से साक्षी की तरफ देखकर कहा, इन दोनों की शक्ल काफी हद तक मिलती है और दोनों के भाई जैसे लग रहे हैं। हाँ, मैंने भी यही नोटिस किया कि इन दोनों की शक्ल आरव जैसी है, पर अफसोस उसने तो अब तक बच्चों को गोद में लेना तो दूर देखा तक नहीं। आयु को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे आरफ को सब बता देना चाहिए था। मुझे नहीं पता था मामला इतना सीरियस हो जाएगा, वरना मैं खुद आरफ को सब बता देती, उसका साथ कभी नहीं देती, साक्षी ने अफसोस भरे स्वर में कहा। मैंने कल रात उससे फिर सब कुछ पूछा था, लेकिन तब भी उसने झूठ बोला। मैंने भाई को बताया नहीं है, लेकिन साक्षी, आयु टेम्पररीली कोमा के स्टेट में चली गई है, नहीं पता उसे कब होश आएगा, अयान ने धीरे से कहा, जिस पर साक्षी चौंक गई। वो सब अभी भी आरफ से झूठ बोल रहे थे। साक्षी ने नामे सिर हिलाकर कहा, प्लीज ये सब मत करो, आरफ को पता चल गया तो वो तुम पर और गुस्सा करेगा, जबकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसे कब तक होश आ जाएगा। कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कल ही होश आ जाए या फिर 1 साल तक भी ना आए, अयान ने जवाब दिया। वहीं दरवाजे पर गौरवी जी खड़ी थी जो इस वक्त बच्चों को देखने आई थी। उसने अयान की बातें सुनी तो उनकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया। उन्होंने खुद को संभालने के लिए दीवार पकड़ ली थी। गौरवी जी तुरंत उस रूम से बाहर आ गईं और उन्होंने अपने मन में कहा, ये तुमने मेरे बच्चे के साथ ठीक नहीं किया आयु, अगर उसे सच का पता चला तो वो टूट जाएगा। तुम्हें ठीक होना होगा, अपने बच्चों के लिए और मेरे बच्चे के लिए। अपने बच्चों के चक्कर में तुम इतनी सेल्फिश हो गई कि तुमने मेरे बच्चे को नज़रअंदाज किया। सोचते हुए गौरवी जी की नज़र सामने की तरफ गई। आयु को शिफ्ट किया जा रहा था और आरव उसके साथ ही था। वो 1 मिनट के लिए भी आयु से अलग नहीं हुआ था। आयु को ओटी से प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया जा चुका था और आरव पूरी देर उसके साथ बैठा था। आरव ने आयु के कमरे से सबको बाहर भेज दिया था और वो रूम में उसके साथ अकेला था। आरव ने आयु का हाथ पकड़ा और भारी आवाज में कहा, हर बार तुम्हारी नादानियों को मैं माफ कर देता हूँ, पर इसका क्या करूँ,
तुम्हारी एक बेवकूफी के चक्कर में मैं तुम्हें खोने वाला था। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना तुमने कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा आयु। मेरा ना सोचती, कम से कम उन बच्चों का तो सोच लेती जिन्हें पैदा करने के लिए तुम मुझसे झगड़ा कर रही थी। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, आई स्वेयर मैं उनका चेहरा भी नहीं देखूंगा। अब तुम्हें अपने बच्चों को प्यार से अच्छे से बड़ा करना है तो तुम्हें होश में आना होगा। आयु का चेहरा देखते हुए आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। हॉस्पिटल के आगे एक गाड़ी तेज गति से चलकर आ रही थी तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी फिर भी नहीं रुकी। अंदर पार्किंग एरिया में किसी दूसरी गाड़ी को हिट करने के बाद उनमें से एक लड़की निकली जिसने ब्लैक कलर का शॉर्ट बॉडीकॉन ड्रेस पहना था। गाड़ी को हिट करने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आंखों पर ब्लैक शेड्स पहने हुए थे और बिना किसी की परवाह के अंदर जा रही थी। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी सीटी बजाई और जोर से चिल्लाकर कहा, अरे रुकिए मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? एक तो आपने मेरा सिग्नल नोटिस नहीं किया, ऊपर से यहाँ किसी डॉक्टर की गाड़ी भी हिट कर दी। आप यहीं रुकिए, पहले आपको फाइन भरना होगा और फिर एंट्री रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप अंदर जा सकती हैं। बोलते हुए वो गार्ड उस लड़की के करीब जाने लगा। सिक्योरिटी गार्ड के चिल्लाने पर वो उसकी तरफ पलटी। उसने अपने शेड्स ऊपर किया और आईज रोल करते हुए उसकी तरफ देखा। वो माहिरा थी, माहिरा लूथरा, जो अपना काम करके अब वापस लौट चुकी थी। डॉट डॉट डॉट, माहिरा की वापसी हो गई है। देखते हैं आगे कहानी क्या मोड़ लेती है। ऊपर से फैज भी आ गया है।